ओम श्री परमात्मने नमः। अत्रयोदशोऽध्याय तेरवाध्याय श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिवदीरते एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः। श्री भगवान बोले हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। ये पहले श्लोक की बात को और कुछ पिछले दो तीन आगे के श्लोक की बात को यदि कोई गहराई से समझ जाएगा, संकट कट जाएगा उसका भी। ये बाद में इसी में कहा अध्याय में कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो अलग अलग जान लेता है उसको ज्ञान कहते हैं। भगवान ने कहा पहले जानना फिर उसका अनुभव। एक बात ये क्षेत्र क्षेत्र के विषय में आरंभ में ही बतला दूं, बड़ी महत्व की बात है। देखो बड़ी सीधी बात है, एक तो है ये शरीर सबका और एक इसी शरीर के अंदर चेतन तत्व है जो इस शरीर को जानता है। पूरी समझ लो इस बात को, क्षेत्र क्षेत्र को भाई शरीर है और ये जानकारी अंदर ही है ना कि आज घुटने में दर्द हो रहा है, ये जानकारी अंदर ही है ना अपने, सीधी सी बात पड़ी है। शरीर है और ये जानकारी अंदर ही है ना कि बाल सफेद हो गए, कि दांत में दर्द है, कि आज पेट ठीक नहीं है, दोनों है ना, क्षेत्र और क्षेत्र को जानने वाला। शरीर और ये शरीर के अंदर जो मन और मन में जो चल रहे हैं ना विचार कि इस तरह से करके वो काम करूंगा, तरकीबबाजी चल रही है मान लीजिए चालाकी, और ये भी समझ में आ रहा है कि ये है तो चालाकी, तो जानकारी अंदर ही है ना और मन में होने वाली वो बात भी अंदर है, दोनों साथ साथ हैं। तो ये जो कुछ जानने में आता है वो तो है क्षेत्र और जो इसको जानता है वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र है जड़ और जानने वाला है चेतन और इस चेतन का नाम ही जीवात्मा और आत्मा, कह दो, दोनों में थोड़ा अंतर रहता है। जीवपना जब समाप्त होता है तब आत्मा का अनुभव। और भगवान यूं कहते हैं कि सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। तो वो जो जानने वाला तत्व है वो अलग अलग होता हुआ भी एक ही है परमात्मा, तो यहां साथ साथ ही है परमात्मा। स्वामी जी महाराज का वो पद है एक, कई लोगों ने सुना होगा, परम प्रभु अपने ही में पायो, अपने में ही मिलता है सब, अंदर प्राप्त होता है। तो ये कह रहे हैं एक है ये जो जड़ शरीर, और शरीर को जब हम कहते हैं तो शरीर के साथ में तीन शरीर योग में, भौतिक जिसका अध्ययन सब आप मॉडर्न मेडिकल साइंस में करते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस मैंने इसलिए शब्द प्रयोग किया कि आयुर्वेद में सूक्ष्म शरीर का अध्ययन भी है जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में उस रूप में नहीं है। कारण शरीर की बात भी है आयुर्वेद में, चरक संहिता में उसका भी है इशारा सब कुछ। ये मैं इसलिए कहता हूं ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है इन क्षेत्रों में। खैर, तो जब हम शरीर कहते हैं तो इस शरीर भौतिक, पांच इंद्रिय ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन और चित्त, मन को चित्त भी कई बार अलग अलग भी करते हैं संस्कार जो स्मृति के, और बुद्धि जो निर्णय लेती है, और अहंकार होनेपन का अहंकार भिन्नता का बोध परमात्म तत्व से अलग होने का, ये सब क्षेत्र है। केवल ये भौतिक शरीर नहीं, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी है या नहीं जो भी है, पर जड़ मानो से जैसा भी है, न हो करके भी है, उसी की सारी परेशानी है। तो प्रश्न ये उठता है, फिर चेतन क्या है? जब ये शरीर तो समझ में आ गया, हाँ भाई जड़ है, लेकिन आप कहते हैं मन भी जड़ है, हाँ मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, हाँ? अच्छा तो फिर चेतन क्या है? तो इसका उत्तर मेरी तरफ से ये है, पता लगाओ भाई, पता लगाओ, तुम्हारी समस्या है। ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत पढ़ लिया, पढ़ पढ़ करके कुछ ऐसे बीच में साधक हैं, उन्होंने लगा लगा के निशान किताबें रंग डाली। कब तक रंगोगे भाई, 20 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, समझे ना? अच्छा, अरे पता लगाओ। कैसे पता लगाएं? पता लगाने की वो विधि काम नहीं देगी जो आप भौतिक विज्ञान के जगत में प्रयोग करते हैं। ये मैंने इसलिए कहा, ये राहुल का चूंकि सब्जेक्ट भी इस प्रकार का है, बहुत सी किताबें मेरे पास लाते रहते हैं, कभी कभी देखता भी हूं, कोई खूब लिखा जा रहा है लाइफ आफ्टर डेथ या सूक्ष्म शरीर क्या है आदि आदि पर, एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं कई जगह, और व्यर्थ वो भी नहीं है, व्यर्थ नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है सारी सृष्टि में। लेकिन सारे संकटों से पार जाने का वो मार्ग नहीं है, क्योंकि वहां पर एक होता है पता लगाने वाला सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। इस दूसरे विज्ञान में, आत्मविज्ञान में, स्वयं ही सब्जेक्ट, स्वयं ही ऑब्जेक्ट, अपने अंदर जाना होता है पता लगाने के लिए। स्वयं ही अपनी लेबोरेटरी स्वयं के अंदर ही होती है, ध्यान के माध्यम से, विवेक का आश्रय लेकर के, या भाव के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, उन सब बातों का पता लगता है। मैंने थोड़ा इशारा इसलिए किया कि चेतन तत्व का अनुभव हो जाना चाहिए कि मैं चेतन हूं, इसलिए मर नहीं सकता, मृत्यु की चिंता बिल्कुल नहीं, चेतन की मृत्यु होती नहीं, न चेतन का जन्म होता है न मृत्यु होती है, आत्मदेव की मैं वो हूं। तो ये अनुभव होगा साधना से। इस विषय में जो लोग वास्तव में उसी में जा रहे हैं, ऐसा मुझे बात ध्यान आई, और जिनके पास ऐसी परिस्थिति और समय हो और उस तरह का इक्विपमेंट भी हो मेंटल आदि, तो महर्षि पतंजलि महाराज का जो योग सूत्र है उससे भी लाभ होता है। वो वैज्ञानिक दृष्टि से महर्षि ने बता दिया है किस प्रकार से चेतन का अनुभव जड़ में होता है, वो एक विज्ञान का दूसरा तरीका है पूरा का पूरा, वो भी गीता का हिस्सा समझे। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जड़ शरीर और जड़ को जानने वाला, और ये अलग अलग अनुभव हो जाए। अब देखो इसी श्लोक में, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं भाई इसको जान लो और अमर हो जाओ, तो अमर तक होने की बात बतलाई है। हम रो रहे हैं बिना मतलब, अरे भाई अमर हो जाओगे, इससे आगे क्या बात होगी? चलो
वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है।
देखो यही स्पष्ट बात कह रखी है, लेकिन उसमें समय लगाना पड़ेगा, रुक करके ध्यान, उन बातों पर ध्यान करना पड़ेगा। ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, संस्कृत के श्लोक में ज्ञानम जेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान रूप है वो, ज्ञान है, उन परमात्मा का स्वरूप ज्ञान रूप है, ज्ञान अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जानकारी और जानने योग्य हैं जे हम, उन्हीं के जानने में जीवन लगाना चाहिए। और कहाँ से जाने जाएंगे? ज्ञान गम्यम, ज्ञान से जाने जाएंगे। तो जाने कहाँ से जाएंगे? ज्ञान से जाने जाएंगे। तो कैसे जाने जाएंगे? अरे जितना ज्ञान इस समय है ना, उसका सदुपयोग करने से है? बुद्धि में प्रकट होता है ना ज्ञान, तो बुद्धि में विवेक भी माध्यम बनती है बुद्धि। यदि बुद्धि बुद्धि की पैदाइश नहीं है विवेक, विवेक तो भगवान से आता है, आत्म तत्व से आता है, लेकिन बुद्धि के माध्यम से। तो बुद्धि में विवेक की किरण का सहारा लेकर के फिर अपने अंदर जाना होगा, सब मालूम हो जाएगा। चलो,
इस प्रकार क्षेत्र का ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है, मेरा भक्त को जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता
है। मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, स्पष्ट कह रहे हैं भगवान। और मेरे भाव को प्राप्त होना, मुझे प्राप्त होना।
कई मनुष्य ध्यानियों के द्वारा, कई साथियों के द्वारा और कई कर्मियों के द्वारा अपने आप से, अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं।
अब इसमें जो कहा है, तीनों मार्ग प्रमुख रूप से हैं, तीन मार्ग सांख्य योग, कर्म योग, अच्छा ध्यान योग, तीन बताए हैं इसमें। भक्ति को मार्ग रूप में भगवान ने नहीं बताया, दो ही निष्ठाएं शुरू में बताई, क्योंकि भक्ति तो सब जगह होगी ही, उसके बिना, और भक्ति भगवान देते हैं, उसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं। तो जैसी जैसी जिसकी प्रकृति हो, क्षमता हो, अलग अलग स्वभाव के अनुसार उस मार्ग से चल करके पहुंच जाएगा। यद्यपि किसी एक मार्ग का जीवन में होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि दूसरे मार्ग की बात उसके जीवन में नहीं आएगी, तीनों मार्ग का समावेश रहता है, एक की अधिकता होती है।
इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के प्रभाव को तथा कार्य कारण से प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं।
अब देखो इस श्लोक में, इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से, तो ज्ञान रूपी नेत्रों से बात समझ में आएगी, इन नेत्रों से नहीं। तीन प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं, एक स्थूल दृष्टि, एक ज्ञान दृष्टि, एक दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि तो भगवान दें, तो वो उनकी इच्छा जिसको दे दें, संजय को उन्होंने दी व्यास जी महाराज ने, माँ मुनि ने, और अर्जुन को भी दी भगवान ने देखने की सामर्थ्य, तो दिव्य दृष्टि की बात छोड़ दें। स्थूल दृष्टि के हम महारथी हैं सब, स्थूल दृष्टि के महारथी हैं हम, चूंकि स्थूल दृष्टि और हर बात की इंटरप्रिटेशन स्थूल, अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार, इसी में सब लगे हुए हैं। इस स्थूल दृष्टि से ऊपर उठ करके एक अंदर ज्ञान दृष्टि पैदा होती है, वो साधना से पैदा होगी, बिना साधना के नहीं होगी। साधना के अनेक प्रकार हैं, जिनमें से एक प्रकार ध्यान भी है। ध्यान का बड़ा महत्व है, यद्यपि गृहस्थ जीवन में उसकी व्यवस्था कठिन होती है, लेकिन जैसी भी परिस्थिति हो उसमें कुछ ना कुछ अभ्यास करना ठीक रहता है, जितना भी संभव हो सके अपनी परिस्थिति में थोड़ा बैठना चाहिए। अंतर्मुखी वृत्ति उससे जागृत होती है, बनती है, धीरे धीरे चित्त फिर शांत भी होता है बाद में। तो उस दृष्टि से जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब स्पष्ट दे रखा है, तो प्राप्त करना है तो भाई हर जो कीमती चीज है उसकी प्राइस तो देनी पड़ेगी, इसकी प्राइस यही है साधना, इसके बिना काम चलेगा नहीं। नहीं करोगे तो पछताना तो पड़ेगा। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं कि श्राप कहने पछताना पड़ेगा। अरे भाई मैं तो चाहता हूं सब आनंद में रहें, लेकिन मेरे चाहने से भी तो कुछ नहीं होगा ना, जो विज्ञान तो विज्ञान है, उसमें क्या करोगे तुम? वासुदेव सुतम देवाम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु।